दिन भर 8 अक्टूबर दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरी हत्याकांड पर चुप्पी तोड़ी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बात दोहराई।
कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है।
बीफ के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायकों ने निर्दलीय विधायक के साथ मारपीट की।
मैं आज हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों को यही ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो फिर आप खुदारा बताइए हिंदुस्तान का होगा क्या आगे, आपकी जमहूरियत चलेगी कैसे।
पंजाब में लगातार दूसरे दिन किसानों का आंदोलन, खेल समाचार और आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दाश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे बड़े नेताओं पर अपने स्वार्थ के लिए ऊटपटांग बयानबाजी करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने लोगों से इन पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो रास्ता दिखाया है, हमें उसी पर चलना होगा, तभी दुनिया भारत से जो अपेक्षा कर रही है वह पूरी की जा सकेगी। कल राष्ट्रपति ने कहा था कि लोगों को देश में विविधता का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए। 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार बेलारूस की लेखिका और पत्रकार स्वेतलाना एलेक्सियाविट्स को दिया गया है। इनाम की घोषणा स्वीडिश अकादमी की स्थायी सदस्य सारा डेनियस ने की। बेलारूस की लेखिका स्वेतलाना एलेक्सियाविट्स को साल 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार आज के समय में महिलाओं के संघर्ष और साहस पर लिखने के लिए दिया जा रहा है। ये थे स्वीडिश अकादमी की स्थायी सदस्य सारा डेनियस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। 67 साल की स्वेतलाना की पहचान राजनीतिक लेखिका के रूप में की जाती है। वे पहली पत्रकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। स्वेतलाना का जन्म यूक्रेन में हुआ था, वे फिलहाल बेलारूस में रहती हैं। यमन में पिछले महीने एक शादी समारोह में हुए हवाई हमलों में मारे जाने वालों की संख्या को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है। कुछ खबरों के अनुसार इसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन हमलों में केवल 13 लोगों की ही मौत हुई थी। ये हमले यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने किए थे। गठबंधन सेना ने पिछले हफ्ते इस खबर से इनकार किया था। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्री रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा कर रहे हैं। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने रूस से कहा कि वह सीरिया में राष्ट्रपति बशीर अल असद की मदद करने के लिए सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले बंद करे। उधर सीरियाई सेना ने कहा है कि उन्होंने रूसी हवाई हमलों की मदद से चरमपंथियों पर हमले तेज कर दिए हैं। सीरियाई सरकार का कहना है कि सरकारी सेना ने हमा के पास अलगॉप के मैदानी इलाके में एक मुख्य गांव पर कब्जा कर लिया है। कीनिया में सरकार में अचानक हुई आर्थिक तंगी के कारणों को समझने के लिए मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई है। देश में धन के अभाव में कई जरूरी बिलों की अदायगी नहीं हो पाई है। इस तंगी से कई मंत्री भी प्रभावित हुए हैं। कईयों ने सरकार पर राजस्व विभाग का फंड बंद करने का आरोप लगाया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए संदीप सोनी का। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान दादरी हत्याकांड पर एक तरह से अपनी चुप्पी तोड़ी। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं कही और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बात को ही दोहराया।
कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। हम सभी देशवासी, 125 करोड़ देशवासी, भारत के सबसे बड़ा मुखिया राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, उससे बड़ा कोई विचार नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई दिशा नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि राजनीति का स्वार्थ सीधा करने के तरीके बंद होने चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के दादरी में कुछ दिन पहले गोमांस खाने की अफवाह पर भीड़ ने अखलाक नाम के एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। तभी से विपक्ष नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने की मांग कर रहा था। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस घटना पर चिंता जताई थी। रुख एक बार फिर बिहार का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई रैलियों को संबोधित किया। हर रैली में मोदी ने लालू और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। लालू नीतीश ने जहां मोदी पर पलटवार किया, वहीं कांग्रेस ने कहा कि मोदी के पास जुबानी जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
मुंगेर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों लिया। लालू यादव के बीफ पर कथित बयान की तरफ इशारा करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा,
उनके भीतर शैतान प्रवेश कर गया। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे मन में सवाल उठता है, ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं आया।
बेगूसराय, समस्तीपुर और नवादा की चुनावी रैलियों में भी नरेंद्र मोदी ने लालू और नीतीश की सरकारों को जमकर कोसा। वहीं लालू प्रसाद ने आरएसएस को नफरत की फैक्ट्री बताकर नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने पर संदेह जताया।
बोलते हैं कि हम पिछड़ा हैं, तो आबादी के अनुपात में हमारा रिजर्वेशन, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको बढ़ाइए, जितना जिसकी आबादी है आरक्षण करो। और वही नहीं, निजी क्षेत्र में भी अपना मानसिकता रवैया स्पष्ट करिए। ये निजी क्षेत्र में भी हमारी आरक्षण की मांग का समर्थन करें, अन्यथा नकली आप पिछड़ा हैं। आरएसएस सामाजिक नफरत फैलाने की फैक्ट्री है आरएसएस।
दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और दादरी हत्याकांड पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में कहा कि अब मोदी का असली रंग दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की बेशर्म कोशिश हो रही है, लेकिन दादरी की घटना पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। इस पर नीतीश के पूर्व सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने कहा,
तो गोमांस का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था क्या? ये आरक्षण का मुद्दा हमने उठाया था क्या? ये जो शब्द वापसी डीएनए से लेकर, देखिए लालू यादव नीतीश के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट का ना एजेंडा ना विजन है। आज तक लालू यादव ने कोई विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है क्या? अपना कोई मैनिफेस्टो रिलीज किया है क्या? तो लालू को तो विकास से कोई मतलब नहीं है, और वो इसी प्रकार की ऊट पटांग बातें बोलकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी।
वहीं कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जबानी जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद को सुनिए।
प्रधानमंत्री जुमलेबाजी के लिए मशहूर हैं, तुकबंदी के लिए मशहूर हैं, पैकेजिंग और रीपैकेजिंग के लिए मशहूर हैं, इसलिए वो कहीं कुछ बोल सकते हैं। लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता भी समझ गई है कि प्रधानमंत्री के पास जबानी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है।
इन तमाम बयानबाजियों के बीच आज ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने दादरी में कथित गोमांस के मुद्दे पर अखलाक की हत्या को सुनियोजित और सांप्रदायिक साजिश बताया।
जो ये दादरी या बसारा गांव की समस्या है, ये बहुत जानबूझ की साजिश है। नाम तो आप जान ही जाएंगे, लेकिन मैन जो हमने अभी तक पता लगाया है, एक विशेष है संताया दल कही से जुड़े तीन लोग मुख्य। अभी तो मैंने सुन रखा है, लेकिन हम डेलीगेशन भेजेंगे तो पता चलेगा कि तीन कौन हैं जिन्होंने इस साजिश को रचा है, और साजिश के तहत उन्होंने इतनी गंभीर घटना पैदा कर दी। दंगे बहुत हुए हैं देश में, केवल यूपी में नहीं, बहुत हमने अयोध्या के सवाल को लेकर भोगा है, देखा है, बहुत कट अनुभव है इस मामले में।
इन तमाम बयानबाजियों से ठोस तो कुछ निकल कर नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने तक आरोप प्रत्यारोपों का दौर इसी तरह जारी रहेगा। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
गोमांस पर प्रतिबंध का मुद्दा जम्मू कश्मीर में एक बार फिर गर्मा गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के दो विधायकों ने एक निर्दलीय विधायक के साथ सदन के भीतर मारपीट की है। निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने एक दिन पहले ही एमएलए हॉस्टल में बीफ पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें मेहमानों को गोमांस परोसा गया था। मारपीट की घटना पर उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता निर्मल सिंह ने माफी मांगी है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में तनाव की स्थिति है और सरकार ने दंगों की आशंका की वजह से मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
इस मारपीट की वजह से गोमांस पर होने वाली बहस भी स्थगित हो गई। दरअसल निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने विधानसभा में चर्चा के लिए एक बिल लाया था जिसमें 83 वर्षीय उस कानून पर परिवर्तन की मांग की गई है जिसके अंतर्गत राज्य में गोमांस के सेवन या गाय काटने पर प्रतिबंध है। जो ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो बीजेपी के दो विधायकों गगन भगत और राजीव शर्मा ने विधायक इंजीनियर रशीद पर हल्ला बोल दिया। अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस घटना का विरोध करते हुए वॉकआउट किया। इंजीनियर रशीद का कहना है कि वो बीफ कानून पर बहस करना चाहते थे लेकिन बीजेपी ने इसको लड़ाई में बदल दिया।
किस तरह से एक लॉ मेकर एक अपने साथी को पकड़ सकता है गले से, उस पर लातों और गोश्त की बारिश कर सकता है और उसको जान से मारने की धमकी दे सकता है? ये तो आप, मैं आज हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूँ, अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों को यही ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो फिर आप खुदारा बताए हिंदुस्तान का होगा क्या आगे, आपकी जमहूरियत चलेगी कैसे?
मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद ने विधानसभा में शांति बहाल करने के लिए बीजेपी के नेता और उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह से कहा कि वो इस घटना के लिए हाउस में माफी मांगें, जिसके बाद मिस्टर सिंह ने कहा कि वो इंजीनियर रशीद पर हुए हमले के लिए शर्मिंदा हैं। बाद में अपोजिशन के सभी विधायक दोबारा विधानसभा के सत्र में शामिल हो गए। बीफ कानून के बाद घाटी में छिड़े विवाद से जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के बीच तनाव बढ़ रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध के कानून को 2 महीने के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया था लेकिन करीब 100 वर्ष पहले बना यह कानून अब बीजेपी और पीडीपी के बीच दरार का कारण बन रहा है। मुफ्ती सईद के करीबी साथी और इनकी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि इंजीनियर रशीद पर हमला कश्मीर राष्ट्र पर हमला है, इसलिए मुफ्ती सईद और महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के साथ सरकार की साझेदारी पर दोबारा गौर करना होगा। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
पंजाब में आज लगातार दूसरे दिन किसानों ने कई जगहों पर रेल रोको आंदोलन किया जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ। किसान नकली कीटनाशक की सप्लाई के कारण बर्बाद हुई कपास की फसल का वाजिब मुआवजा न मिलने से नाराज हैं। चंडीगढ़ से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
पंजाब के किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए पिछले 4 दिन से एजिटेशन पर हैं। उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने हेतु आज भी पंजाब भर में रेल यातायात को रोके रखा। पंजाब के किसान पंजाब की जगह जगह पर रेल ट्रैक्स पर बैठे और उसको जाम किया। गुस्सा उनका पंजाब सरकार और केंद्र सरकार पर था। जिन मुद्दों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वे हैं, सरकार द्वारा नकली कीटनाशक दवा की खरीद कर उसकी सप्लाई सरकारी विभाग द्वारा करवानी, जिससे पंजाब के मालवा बेल्ट में नरमे की, जिसको कॉटन कहते हैं, की फसल लगभग 70% बर्बाद हो गई है और बाद में सरकार द्वारा उसका मुआवजा भी पूरा नहीं दे पाना, उनका यह आरोप है। और दूसरा मुद्दा धान की 1509 नंबर किस्म की खरीद समय पर नहीं हो पा रही और उसके पूरा पैसा नहीं मिल रहा। इसके अलावा गन्ने की MSP भी खरीद की भी मांग है। हालांकि सरकार ने कीटनाशक दवाई घोटाले में सरकार के जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर को गिरफ्तार तो किया है लेकिन किसान मंत्री तोता सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही और गिरफ्तारी भी नहीं कर रही, तो उनको न्याय नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है
कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बाजवा कहना सदाम हुसैन, कैप्टन बाजवा कैप्टन कहना सदाम हुसैन, पहले ऐ कर अपना फैसला कर लेन, कौन सदाम हुसैन है, कौन पार्टी का प्रेजिडेंट है, किने अगे लड़ाई लड़नी है, किनू पार्टी चो कढ़िया जाना है, वो अपना फैसला कर लेन, फिर साडे नाल गल कर लेन।
किसानों की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान प्रताप सिंह बाजवा द्वारा सारा दोष बादल सरकार पर डालते हैं। उनका कहना है कि मालवा बेल्ट 70% कॉटन क्रॉप बर्बाद हो गई है और कई किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वे मजबूर हो गए हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया। बाजवा जी कहते हैं,
ये बेईमानों की सरकार है। प्रकाश सिंह बादल का जो हार्टलैंड है इसकी पॉलिटिक्स का, मालवा में मैं 3 दिन रहा, वहाँ 12 लाख एकड़ कॉटन बोई जाती है। जो ये जाली इन्होंने पेस्टिसाइड वहाँ दी है, कीड़े मार दवाइयाँ दी, उस दवाई से 70% नरमे की जो कॉटन का क्रॉप है खत्म हो चुका है। 5 करोड़ रुपया इनके डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने, जो मंगल सिंह संधु गिरफ्तार हुआ है, उसने लिया है। ये अब चाहते ये हैं कि ये हमारे खिलाफ जो गुस्सा है लोगों का, ये तोपों का मुंह जो है, जो इसका चेहरा है तोपों का, वो बादल के घर के बजाय मोदी को घर को कर दिया जाए।
इन सब एजिटेशन के चलते पंजाब के गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं। उनका कहना है कि व्हाइट फ्लाई ने हरियाणा और राजस्थान में ज्यादा नुकसान किया जबकि पंजाब में इतना नुकसान नहीं हो पाया, लेकिन उनका कहना है कि पंजाब में उन्होंने अपने किसानों को उन राज्यों के बनिस्पत अधिक कंपनसेशन दिया।
1509 ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਮ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਲੀ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ 1509 ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ।
ਅਬ ਸੱਚ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਯਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇ ਚਲਤੇ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਰੋਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪਰ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਜਾਏ ਯਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਜ ਰਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਬਿਨ।
दुनिया की बड़ी खबरें बीबीसी के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर बीबीसी दुनिया, ईटीवी नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है बीबीसी दुनिया, मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं।
उससे बात करने में बहुत मजा आता है।
तो देखना मत भूलिए बीबीसी दुनिया शाम 9:20 पर ईटीवी के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। बीबीसी दुनिया।
पाकिस्तान में 10 साल पहले यानी साल 2005 में आज ही के दिन जोरदार भूकंप आया था, जिसमें पाक प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में भी हजारों लोग प्रभावित हुए थे। यहां रहने वाले लोग दरअसल वो लोग हैं जो 90 के दशक में भारत प्रशासित कश्मीर से भागकर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर चले गए थे। इन लोगों का कहना है कि भारत या पाकिस्तान में उन्हें कहीं भी बेहतर जिंदगी नसीब नहीं हुई। बीबीसी उर्दू संवाददाता अंबर शमसी ने ऐसी ही एक व्यक्ति से मुलाकात की।
इस कैंप में वो लोग रहते हैं जो एक तरह से बटे हुए हैं। 25 साल पहले वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से भागकर यहाँ आए थे, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, लेकिन जो ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं। शहीद बशीर कैंप के सदर अब्दुल कयूम से बात करते हैं। बता सकते हैं कि जब जलजला आया था आप कहीं और रहते थे तो बहुत लोग शहीद भी हुए थे।
हम जिस वक्त ज़िला हुआ तो उस वक्त हम कमसर के अंदर थे, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर ये हमारे हमसाए के अंदर हैं। तो वहाँ हम जिस वक्त ज़िला हुआ था सवेरे 8-9 बजे का वाक़ा था, तो उस वक्त दुनिया में हम समझ रहे थे दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं रहा है।
अच्छा, वहाँ पक्के भी घर थे और आपके भी
305 मतलब हमारे लोग शहीद हुए हैं उस दौरान। हम वहाँ 3 कैंपों के अंदर मुश्तमिल थे, 300-400 फैमिली थी वहाँ उस वक़्त वहाँ मौजूद। तो अब जो चेला के अंदर हम उसके बाद हम चेला के अंदर आए हैं, चेला के अंदर इस वक्त 800 कुछ फैमिली यहाँ रह रही है जिसके 10 कैंप हैं। तो कैंपों के अंदर हम 10 साल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें हमें मतलब किराए की ज़मीन है। तो हकीकत यह है जी, ज़मीन हमें देनी चाहिए, गुजारा लोन से हमें 1500 रुपया है, यूमे 50 रुपया है, 3 आदमी मेरे हैं तो 45 रुपये पर हमारा गुजारा महीने का हो सकता है। उसमें फीस है, मेडिकल का खर्चा है, कपड़ा है, खाना पीना है।
तो आप लोग को लगता है कि आपको इतनी कम मदद आपकी क्यों की गई?
ये तो हमारी आज़ाद कश्मीर और गवर्नमेंट पाकिस्तान की मेहरबानी है जो हमें कम दिया जाता है, जो को हमें हमारा मतलब दे रहे हैं, देने का हक़ था। जहाँ से हिंदुस्तान के अंदर जो महाजरीन मेरा ख्याल है 2 लाख से 5 लाख से कुछ ओबकार का यहाँ कश्मीर से जम्मू की तरफ दिल्ली की तरफ गए हैं, तो उनको 2000 रुपया मंथली मिल रहा है और खाना राशन और गवर्नमेंट का सर्विस भी मिली हुई है। जो हम मुलाजम आए थे पार से 0 के 0 हैं, हमें कोई इसका मतलब मुआवजा नहीं मिला। और यहाँ हम आकर 25 साल गुजर गए, हम देख रहे हैं गवर्नमेंट का मुंह देख रहे हैं। हर वज़ीर आज़म आता है रात को, वादा करता है हम सवेरे आपको फूलों के हार डाल देंगे, तो मेरा ख्याल 25 साल से अभी तक कोई फूल का हार नहीं डाला।
तो उस वक्त जब आप आए थे तो सफ़र के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बता सकता हूँ।
हम जिस वक्त उस वक्त आए थे, हम रात के दौर में आए थे, हमारी खवातीन रास्ते से वापस भी कुछ गई हैं, हमारे बच्चे कुछ रात को रह गए थे रास्तों में। वो लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनमें से, ठीक है। हमने बॉर्डर क्रॉस की, हमने पाकिस्तान के नाम हम आए थे, दीन की खातर आए थे, हम हिंदुस्तान भी जा सकते थे, हमें कोई फांसी का ख़तरा नहीं था। हम सर्विस खुद छोड़ कर आए, हम 100 मुलाजम यहाँ आए, लाका केरन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से 100-150 मुलाजम हम यहाँ आए। तो हम इस वक्त तक हम मुंह देख रहे हैं,
हुकूमत ने शेल्टर का और ज़मीन का इंतज़ाम तो किया,
हम यहाँ कुछ चंद जगह किया है। 11 साल गुजर गए, 11 साल के अंदर हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। सब वज़ीर आज़म साहब भी झूठ कह रहे हैं, हमारे वज़ीर भी झूठे हैं, हमारे दूसरे भी जूठे 800 फैमिली को या 2000 फैमिली को एडजस्टमेंट करने की कोई लंबी बात नहीं थी। यहाँ इतने क्रॉस फार्म पड़े हुए।
तो आपको लगता है कि जो आप जिस आज़ादी के लिए यहाँ आए थे वहाँ जो खौफ था कौन सा बेहतर है?
क्यों आधे लोग वहाँ तड़फ रहे हैं, किसी का बेटा है, किसी की माँ है, किसी का भाई है, मतलब है हमारे अपनी फूफियाँ हैं दाएँ बाएँ, उनके वो मर रही हैं, उनके बच्चे मर गए दाएँ बाएँ हुए, तो हम यहाँ बिछड़े हुए देख रहे हैं। हम तो चंद हफ्ते के लिए आए थे ना, हमें तो उस वक्त ये कहा था कि चंद हफ्ते के अंदर कश्मीर आज़ाद हो जाएगी, तो 25 साल गुजर गए, अभी आज़ादी है।
25 साल पहले भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से यहाँ आए, 10 साल पहले जलजले से मुतासर हुए, लेकिन ऐसे ज़ाहिर होता है कि अभी तक आबाद नहीं हुए। अंबर शमसी, BBC न्यूज, मुजफ्फराबाद।
और अब श्रोताओं की चिट्ठियां।
श्रोताओं की चिट्ठियों के कार्यक्रम आपकी राय के साथ मैं हूं स्वाति बख्शी।
नमस्कार, मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
और राजेश जी, मैं देख रही हूं कि आज चिट्ठियों में काफी सारी शिकायतें नजर आ रही हैं। सबसे पहला जो मेल मैं उठा रही हूँ वो हमें भेजा है जंग बहादुर सिंह ने गोल पहाड़ी से। लिखते हैं कि जुबैर अहमद की जो रिपोर्ट जयप्रकाश नारायण और उनके राजनीतिक विरासत पर केंद्रित थी वो और व्यापक होनी चाहिए थी। इसके अलावा इसके पहले की जो सवेरा था उस दिन वाले कार्यक्रम में भी उनकी एक रिपोर्ट थी जिसमें वो बार बार शिवनंदन तिवारी कह रहे थे, जबकि शिवनंदन तिवारी संन्यास ले चुके हैं और उनकी जगह पर शिवानंद तिवारी का नाम होना चाहिए था। और इन्होंने एक बात और लिखी है कि बिहार में BBC के जो स्पेशल पत्रकार आए हैं वो कम से कम अपने श्रोताओं से मिल लें। आप इसे मेरी जिद कहकर कहेंगे कि इन लोगों के पास वक्त बहुत कम होगा, मिल नहीं पाएंगे।
सबसे पहले तो ये कि अगर आपको कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा या आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई कार्यक्रम से जो बिहार में JP की विरासत के बारे में, राजनीतिक विरासत के बारे में थी, तो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई ऐसा विषय उठाया जाता है तो जाहिर है कि उसमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, और कई बार हो सकता है, संभव है कि आपकी वो उम्मीद पूरी न हुई हो। अगर आप और विस्तार से हमें लिखते जंग बहादुर जी और ये बताते कि वो कौन से पहलू थे जिन पर हमने गौर नहीं किया, वो या कौन से मुद्दे थे जो हमने नहीं उठाए, या वो कौन से मुद्दे थे जिस पर हमें और विस्तार से चर्चा की ज़रूरत थी, तो मैं ये बात ज़ुबैर अहमद साहब तक पहुंचा देता। वैसे फिर भी ज़ुबैर साहब को हम ये बताएंगे कि हमारे एक पुराने श्रोता को ये पसंद नहीं आया कार्यक्रम। जहां तक भूल चूक का सवाल है तो उसके लिए तो हम हमेशा बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं। जो नेता हैं बिहार के पुराने, उनका नाम शिवानंद तिवारी है, शिवानंद तिवारी ही होना चाहिए था। अगर ज़ुबैर साहब से गलती हुई तो BBC की तरफ से हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई और बात कही थी?
जी, उन्होंने कहा था कि आपके जो स्पेशल रिपोर्टर्स आए हुए हैं बिहार में वो अगर मिल सकें।
जो स्पेशल रिपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल सड़क पर हैं, बाज़ार में हैं, चौराहों पर हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी आवाज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, हमें भेज रहे हैं। तो लोगों से मिले बिना तो रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, वो तो कर रहे हैं।
मेरा, और हो सकता है इनसे भी मिल जाए सड़क
हो में? सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सलमान भागलपुर में थे, मैंने देखा कि वो एक बुनकरों की बस्ती में थे, घिरे हुए थे बुनकरों से, और उनसे बात कर रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से BBC के रिपोर्टर जब भी फील्ड में जाते हैं तो वो लोगों से ज़रूर मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, और इस बार भी जो हमारे रिपोर्टर्स हैं बिहार में वो ऐसा ही कर रहे हैं।
एक और शिकायत मोहम्मद आसिफ की मलकापुर से इन्होंने चिट्ठी लिखी है, मेल लिखा है, कहते हैं कि लगता है कि BBC को मिले हुए 30 मिनट काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं और न्यूज़ आप इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, तभी एक ही रिपोर्ट को बार बार सुनाते हैं। तेलंगाना से किसानों पर रिपोर्ट पहले भी प्रसारित हुई थी और फिर उसे मंडे को घटनाचक्र में भी सुनाया गया, क्यों? जब प्रसारण 24 घंटे तक वेबसाइट पर उपलब्ध है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत?
मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहता हूँ कि असल में जो तेलंगाना में किसानों की दुर्दशा है या जो सूखा प्रभावित ज़िले हैं भारत के, वहाँ जो किसानों की दशा है वो अपने आप में एक बहुत व्यापक और बड़ी एक ऐसी कहानी है भारत के उस हिस्से की जो मीडिया की नज़र से बिल्कुल दूर है, ओझल है, और किसी को उनका ख्याल नहीं आता, ना वो अखबार में, ना पत्रिकाओं में, ना TV पर, ना रेडियो पर कहीं दिखाई सुनाई नहीं देते। उन लोगों के बीच जाकर अजय शर्मा काम कर रहे हैं, तो वो लोग जिन्होंने एक कार्यक्रम सुना उसके बाद हम नहीं जानते कि दूसरा कार्यक्रम वही लोग सुन रहे हैं, दूसरे लोग सुन रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ जो बहुत कम देखने सुनने को मिलती है और हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कम से कम दो बार प्रसारित करें ताकि जिन लोगों ने पहली बार नहीं सुना हो वो सुन सकें।
जी, जगत सिंह थामी ने धारचूला से मेल लिखा है, लिखते हैं कि सभी संवाददाताओं की तारीफ सुनी लेकिन आदेश कुमार गुप्त के बारे में नहीं सुना। मैं कहना चाहता हूं कि वो खेल समाचारों के किंग खान हैं, उनकी आवाज़ दिल को छू जाती है और वो बहुत कम समय में रोचक खेल जानकारी हम तक पहुँचाते हैं। इन्होंने मोहनलाल शर्मा की तारीफ में भी कुछ शब्द लिखे।
बहुत अच्छा। और ये आदेश कुमार गुप्त को अब से मुझे याद है कोई 2-3 महीने पहले किसी ने अमिताभ बच्चन भी कहा था और अब उसके बाद वाली पीढ़ी किंग खान, ये भी ठीक है, उनको बता दिया जाएगा कि उनको दूसरी उपाधि भी एक श्रोता से मिल चुकी है।
राजेश जी, कुछ पत्रों में ये भी कहा गया कि हमारी जो नई टीवी पेशकश है बीबीसी दुनिया, उसके बारे में, उसके वक्त के बारे में और उसके बारे में थोड़ी सी अगर आप जानकारी दे दें इसी कार्यक्रम में। तो
बीबीसी दुनिया 10 मिनट का एक टीवी कार्यक्रम है जिसमें हम दुनिया भर की बड़ी खबरें बीबीसी के रिपोर्टर्स जिस तरह से करते हैं, हमारा जो खबरों को दिखाने का अंदाज है उस खास अंदाज में पेश करते हैं। ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क जो कि भारत का सबसे बड़ा रीजनल टेलीविजन नेटवर्क है, उसके सभी हिंदी के चैनलों पर और उर्दू के चैनल पर, तो समय उसका है 9:20 से 9:30 ईटीवी के सभी हिंदी भाषी चैनलों पर और साथ में उर्दू पर।
जी, और अब वक्त है विदा लेने का।
जी, विदा लेने से पहले हमारा पता बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। तो स्वाति बख्शी के साथ मुझे राजेश प्रियदर्शी को फिलहाल अनुमति दीजिए। नमस्कार।
और अब खेल की खबर बताने के लिए राखी शर्मा स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी बिल्कुल, आखिरी T20 मैच खेला जाना था, या अभी कहें कि मैच फिलहाल तो खेला ही जाना है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन्स गार्डन पर, लेकिन अच्छी खबर नहीं आ रही है क्योंकि बारिश की वजह से मैदान गीला जो हुआ था वो अब तक सूखा नहीं है। 7:30 बजे एक निरीक्षण किया गया था मैच का, तो मैदान अभी भी गीला है और 8:30 बजे फिर से एक और निरीक्षण किया जाएगा जिसके बाद पता चलेगा कि मैच कितने ओवरों का खेला जाना है, क्योंकि नियम तो यही कहते हैं कि अगर तय समय से 1 घंटे की भी देरी होती है तो ओवरों में कटौती होती है। अब निश्चित तौर पर कुछ ओवर तो काटे ही जाएंगे और अगर सबसे जो आखिरी बात कहें तो 10:15 तक भी अगर मैच शुरू करने की स्थिति में नहीं होगा तो ये मैच कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। फिलहाल अगर मैच की तरफ देखें तो भारतीय टीम के सामने आज काफ़ी चुनौतियां होंगी। पहली तो ये कि क्लीन स्वीप से भारतीय टीम बचना चाहेगी क्योंकि पहले दोनों T20 उसने गवा दिए थे धर्मशाला और कटक में। इसके अलावा भारतीय टीम आज किन खिलाड़ियों के साथ उतरती है ये भी एक बड़ा सवाल रहने वाला है, क्योंकि पिछला मैच जो कटक में भारतीय टीम ने हारा उसमें धोनी के प्लेइंग 11 पर काफ़ी सवाल या निशान खड़े हुए थे और आज ईडन गार्डन्स भले ही एक औपचारिकता का मैच है लेकिन खुद महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। इससे पहले धोनी की टीम चाहेगी कि जीत की राह पर लौट जाए और T20 और 50 ओवरों का विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके भारत के कप्तान धोनी के खिलाफ भी ये अटकलें हैं कि उनके दिन अब लग चुके हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की टीम से मिली हार से धोनी पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है।
और अब एक बार फिर वक्त हो चला है प्रमुख समाचार मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो रास्ता दिखाया है हमें उसी पर चलना होगा, तभी दुनिया भारत से जो अपेक्षा कर रही है वह पूरी की जा सकेगी। 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार बेलारूस की लेखिका और पत्रकार स्वेतलाना अलेक्सियाविट्स को दिया गया है। उन्हें यह इनाम आज के समय में महिलाओं के संघर्ष और साहस पर लिखने के लिए दिया गया है। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने रूस से कहा है कि वह सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले बंद करें। कीनिया में सरकार में अचानक हुई आर्थिक तंगी के कारणों को समझने के लिए मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई है। फीफा फुटबॉल की देखरेख करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष सेप प्लेटर को अस्थायी तौर पर 90 दिनों के लिए संस्था से निलंबित कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन के गृह मंत्रियों ने लक्समबर्ग में एक बैठक के बाद कहा कि यूरोपीय देशों में उन शरणार्थियों को वापस भेजने की तैयारी में तेजी लाई जाएगी जिनके आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जा सका है। बीबीसी समाचार।
आज दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण ठीक 1.5 घंटे के बाद 9:30 बजे घटना चक्र। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाजत।